आज जो इस्लाम के पास आएगा वो किस तरह आएगा, अब उसके मरहले देखिए। कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हम नाजिल करते हैं, तुम नहीं कर सकते, हम इस कुरान से वो कुछ नाजिल करते हैं जो शिफा भी है और रहमत भी है अहले ईमान के हक में। कुरान जरिया है गलबे इस्लाम का। आज इसी कुरान को पुश्त पीछे डाला हुआ है, लीस्ट प्रायोरिटी, पहले से तैयार है कि कोई कुर्बानी नहीं करनी, पहले से परेशान है कि नहीं कोई नया काम ना सर पे पड़ जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, कोई और जिम्मेदारी ना पड़ जाए, कुछ और देन लेन ना शुरू हो जाए। तो कुरान वो दरवाज़ा है जहाँ से उम्मतें फातह बन के गुजरती हैं। आज मैं और आप जिस दौर में गुजरें, इस वक्त हम मुसलमान महकूम हैं, मजलूम हैं, मकहूर हैं। ये कुरान के जो दरवाजे खुल रहे हैं ना नस्लों पर, आप पे, मेरे पे, अल्लाह ने आज मुसलमानों को जगा दिया, ये अब इंशाल्लाह कामयाबियों के रास्ते हैं। तो ये कुरान दिलों को बदलता है। अल्लाह अकबर। आपने एक चीज़ नोट की है कि नहीं अभी तक? सबसे ज्यादा लफ्ज़ कुरान सूरत बनी इसराइल में आ रहा है। कहीं फुरकान आता है, कहीं हकीम आता है, कहीं हिकमत वाली आता है, लेकिन इस सूरत में कुरान कुरान कुरान। अल्लाह ने इसको शिफा और रहमत का, यही बात सूरह यूनुस की आयत 57 में पढ़ चुके कि या अय्युहन्नास क़द जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो, आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से और तुम्हारे सीनों के अमराज की शिफा और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत। ये कुरान है जो शिफा है। किस चीज़ की शिफा? देखिए, बीमारियाँ अमूमन चार किस्म की होती हैं और कुरान इन चारों की शिफा है। सबसे पहले तो आप कुरान की शिफा ले लीजिए कि मुर्दा दिलों की ज़िंदगी। आज के दौर में भी जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, 98% उनमें से कुरान सुन के ही आते हैं। तो सबसे पहले तो कुरान दिल के अंदर से कुफर की बीमारी को निकाल कर इस्लाम की मोहब्बत डाल देता है। फिर दूसरी चीज़, आप देखिए कि कुरान में जो जिस्मानी बीमारियों की शिफा है उसको भी अगर आप देख लीजिए। कुरान पाक की बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो हमें दिल की बीमारियों का इलाज बताती हैं, जैसे पीछे हम पढ़ चुके फ़ी कुलूबिहिम मरदन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। निफाक को अल्लाह ताला ने किस नाम से पेश किया सूरह बकरा के शुरू में? कि इनके दिलों में बीमारी है, निफाक की, कुफर की, शक की। कुरान इन बीमारियों का भी इलाज है। बड़े से बड़े निफाक वाला शख्स भी जब सच्चे दिल से कुरान सुनने बैठ जाता है ना, तो वो और ज्यादा रोता है। जिस्मानी बीमारियां कैसे रुकती हैं? आप देख लीजिए, सेहत की हिफाजत है इसमें। कुरान के पैगाम पे अमल कर लें, नुकसानदेह चीज़ें छोड़ दें। वजू करते हैं तो आज आपको तक डिप्रेशन के इलाज वजू से किया जा रहा है। योगा करते हैं लोग हेल्थ के लिए, तो नमाज के बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो योगा के एक्शंस हैं। कुरान की कुछ आयतें जिसमें सबसे बड़ी खूबसूरत सूरत अल-फातिहा है। अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा हुआ कि एक जगह बिच्छू ने किसी को काट लिया, तो सहाबी ने उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम किया तो वो उसका दर्द ठीक हो गया, जम ठीक हो गया। आज भी आता है 7 दफ़ा तकलीफ वाले हिस्से पर हाथ लगाकर सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी रात को कुल हो अल्लाह से लेके नास और फलक ये पढ़ के पूरे जिस्म पे यूं फूक करते थे, थकन दूर हो जाती है। तो कुरान का असर तो आपको पता है। एक ईमेल किसी ने भेजी थी, 2 सेब लिए हुए थे और दोनों सेब वक्त के साथ साथ ख़राब होने वाले हो जाते हैं ना। एक सेब को उसके अंदर उन्हें वो जो रॉड्स होते हैं ना लगाकर, जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं कुछ इस किस्म की चीज़ लगाकर, मुसलसल उस के ऊपर कुरान पाक पढ़ा गया। अब ये करना है कि नहीं इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ इस वक्त आप इस मैसेज पे नज़र रखें कि हैरत अंगेज हद तक जो वहाँ उसके नतायज थे, कहते कि जिस सेब के पास कुरान पाक की तिलावत चल रही थी और उसके पास उसकी लहरें आ रही थी, वो शेर बिल्कुल सही हालत में रहा, जबकि दूसरा बिल्कुल चुचड़ के काला हो चुका था। तो जब एक सेब का दिल ऐसा हो सकता है तो एक मोमिन का दिल। तो बीमारियां तो चाहे कुफर की, शिर्क की, तकब्बुर की, हसद की, हुब्बे माल की बीमारी, हुब्बे जाह की बीमारी, औलाद की बीमारी कि जिसमें सिर्फ औलाद ही दिल के अंदर बस जाए, इन सब का इलाज कुरान है। ये कुरान दिल को साफ कर देता है। एक बादशाह ने एक हकीम को मदीना में भेजा कि इधर कोई डॉक्टर नहीं है, जाओ तुम काम करो, तुम्हारा काम बहुत चलेगा। 6 महीने तक वहां दुकान खोल के बैठा रहा, कोई मरीज ही नहीं आया। एक दिन कहने लगा कि क्या तुम लोग बीमार नहीं होते? कहा नहीं, हम तो नहीं होते। क्यों? कहने लगे कि हम नबी की सुन्नतों पे अमल करते हैं, 3 हिस्से करते हैं बैठ के, एक हिस्सा खाने का, एक पीने का और एक खाली हवा के लिए। दुकान समेटी कहने लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, और निकल गया। आज हम सब इतने बीमार क्यों रहते हैं? कल मैंने आप में से किसी से पूछा आप लेट क्यों? कहने लगी डॉक्टर पे गई। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। तो आप क्यों गई? अपॉइंटमेंट था। भाई आप ठीक है? मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तो क्यों गई आप? मेरा ले सब डॉक्टर्स और डॉक्टरों के घरों वाले तो मेरे से बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं खुद सोचती हूँ आप वैसे उनको फीस भेज दिया करें, उनका भी वक्त जाया होता है। और फिर हम जब अक्सर पाकिस्तानी लोग डॉक्टरों को दिखा के आते हैं तो मुंह लटका होता है, दिया ही कुछ नहीं डॉक्टर ने। हमारे मुल्क के अच्छे हैं, कम से कम 7-8 किस्म की गोलियां तो पकड़ा देते हैं, कोई सब्ज नीली पीली ये खाओ, क्योंकि डॉक्टर कुछ ना दे तो हमें और ही बुरा लगता है कि इसको पता ही नहीं चला मुझे बीमारी क्या है। निकाले अपने दिमाग से ये हवा, देखिए पैसा ही नहीं लगता, वक्त कितना लगता है और कितनी एफर्ट लगती है और कितना उसके बाद दिल में, ये तो पक्की बात है कि आप हॉस्पिटल जाके बैठे हैं तो आपको हर दूसरी चीज देख के लगेगा कि मुझे भी है, साइकोलॉजिकली मरीज बन के आप आ जाते हैं। तो आप इन मुश्किलों में क्यों पड़ते हैं? और खास तौर पर आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25% क्लास एबसेंट है, आपको भी लग रहा है? मेरे चेहरे के अंदर वो, आंखों के अंदर वो नाम है। और जो सबक आज के थे, क्या ये सबक का कोई मोल है? मैं नहीं मानती कि घर से वो इतने तपाक से बैठ के सुन रहे होंगे, और अल्लाह ही सुनवा दे तो सुना दे। हम घर साफ करते रहते हैं, हमारे दिल गंदे हैं, यकीन करें। हम जिस्म की बीमारियों के लिए उन गरीब डॉक्टरों के पास जाते हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता। वो तो बेचारे अभी बीमारियों के नाम याद करते हैं, उनको क्या पता कि बीमार कौन होता है? बीमारी का तो सबसे पहले आपको खुद पता चलता है। पहले हकीम नब्ज देखते थे, बीमारी की जड़ पकड़ लेते थे। आज टेस्टों में जब तक कोई चीज खुल के ना आ जाए तब भी दवाई नहीं देते कि हम गलत दवा दे के फंस ना जाए। और ये कुरान जो हमारी बीमारियों को, फिर रूहानी बीमारियों को दूर करता है। आप कह लीजिए कि अंबिया कराम रूहानी मालिज होते थे, आज दीन की दावत देने वाले लोग ये रूहानी डॉक्टर हैं। ये स्कूल और मदरसे इदारे जो हैं ये रूहानी हॉस्पिटल्स हैं। कितने डिप्रेशन के मारे हुए लोग आते हैं, अल्लाह ताला उनको बदल देता है। हमारे साथ तो लोग शेयर बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं, हमें इसलिए बहुत पता होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से भी देख सकते हैं। क्लास में आए और क्लास में ना आए, क्या वो दिन एक जैसा गुजरता है? तो इसकी वजह हम लोग नहीं है, ये कुरान है। इसलिए अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं कि इसमें से खैर वही लेगा जिसका नसीब होगा, वरना तो वला यजीद जालिमीन इल्ला खसारा, जालिमों को नहीं बढ़ाता मगर खसारे में। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज कुरान में, और कुरान से इलाज कराएं भी ना ज्यादा से ज्यादा तो हम उसका तवीज बांध लेते हैं गले में, घोल के पिला दो, उसकी आयतें सामने रख लो। हालांकि जो कुरान पढ़ता है समझता है, आप देखिए ये जो आप लफ्जी तर्जमा याद करते हैं, आपको नहीं पता कितनी बीमारियों से आप इस पिछले 6 महीने 8 महीने में बच चुके हैं, क्योंकि आपने इतना कुरान पढ़ा। आप बीमार होने वाले थे लेकिन शिफा मिल गई। ये जो लोग आके गवाहियां देते हैं कुरान की क्लास में आए तो ठीक होना शुरू हो गए हैं और डिप्रेशन खत्म हो गया, उसकी वजह क्या है कि वो रोज एक डोज ले रहे हैं ना। देखिए 8-10 आयतें तो कम से कम सबक में होती हैं, अब 10 आयतों को घर जाके मुझे यकीन है कि आप 10-10 बार पढ़ते हैं अपनी अमानत पूरी करने के लिए। 100 दफा तो आपने पढ़ ली ना, तो 100 बार एक गोली खाएं तो क्या उसका असर जिस्म के रग रेशे पे नहीं जाएगा? इससे आप ठीक हो जाते हैं। तो लोग खामखा कहते हैं कि हम कुरान की क्लास में आप ठीक हुए, असल में कुरान की दवा आपको ठीक करती है, इसकी बरकतें हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं है, सबको फायदा नहीं होता। सूरह बकरा आयत 26 में भी हम पढ़ चुके, यो दिल्लु बिही कसीरन, बहुत सारों को इसके साथ बहका भी देता है वो यहदी बिही कसीरन, और बहुत सारों को राह भी देता है। हाँ फमा यो दिल्लु बिही लल फासिकीन, नहीं राह दिखाता मगर फासिकों को। फिर इंसान का हाल क्या होता है, आयत 83, वैजानम ना अलल इंसानी आरदा व ना बिजानी बिही, बड़ा मुश्किल लफ्ज है, इस पे नजर रखेंगे वरना ना कह देंगे इसको ना, ठीक है। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वह एराज करता है और हमसे कन्नी कुतराने लगता है। हाँ वैजा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, फिर जब उस पर कोई तकलीफ आ पड़ती है तो मायूस होकर रह जाता है। टेक्स्ट के साथ बताइए कि यहां नेमत से कौन सी नेमत मुराद है? कुरान की नेमत, मिल्लत इस्लाम का एक फर्द होने की नेमत, एक ऐसा बशर होने की नेमत कि जो इंसान को अल्लाह की तरफ जोड़ देता है। इस आयत में बता दिया गया कि लोग अमूमन नेमतों की कदर नहीं करते, एराज बरतते हैं, पहलू तही करते हैं, और फिर जब उस पहलू तही की सजा में अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ आती है तो फिर कान यऊसा, यास के अंदर चला जाता है। ये जो लफ्ज है ना यऊस, फाउल का वजन है, यास तो उर्दू में भी पढ़ते हैं, उम्मीद और यास नाउमीदी को कहते हैं, मायूस, ये जो लफ्ज मायूस है वो भी इसी से है, डिप्रेशन में चला जाता है। और आरदा क्या होता है, एराज कैसे करता है? ये कोई इबादत के दिन है, ये कोई कुरान पढ़ने की उम्र है, ये तो इंजॉय करने के दिन है, ये तो हमारा स्कूल पढ़ने के दिन, स्कूल में जाने के, कॉलेज के पढ़ने के, और हम पैसे वाले लोग पढ़े, ये गरीब गुरबा का काम है जो बेचारे कहीं यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, वो बैठ के मदरसे में कुरान पढ़े। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दुनिया का इल्म ज़्यादा मिलता है ना जब, तो वो दीन के इल्म को और ही पीछे कर देते हैं, कहते हैं ये फारिग लोग करें, हम कैसे कर सकते हैं। और जब खुशी और गम आता है ना तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी को पहचानता नहीं। देखिए आम दिनों में हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, लेकिन दो मौके ऐसे आते हैं हम सब की ज़िंदगी में और आते ही रहते हैं बार बार, थोड़े थोड़े दिन बाद, जिसमें हम अपने आप को पहचानते हैं। और एक खुशियों का दिन है और एक गम का दिन है। आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि रूटीन लाइफ में हम सब ठीक होते हैं, जब रूटीन से बिगड़कर कोई खुशी मिल जाती है या तकलीफ, चाहे बीमारी ही कर लें जो पीछे बात चल रही है, तो उस वक्त हमारा पता चलता है। एक शेर है मौलाना जफर का, कहते हैं कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो चाहे कितना ही साहिब फहमोजा का, यानी आप उसको आदमी ना कहें, चाहे वो आपकी नज़र में बहुत जकी, बड़ा फहम वाला, बड़ा अक्लमंद जीनियस ही हो, कौन जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। ऐश में अल्लाह नहीं याद रहता, खुशी का मौका है बहक गए, और गुस्सा आ गया तैश में तो जुबान से जो मर्जी उल पुल बोल लें, का वो आदमी नहीं है। तो हम सब खुद को पहचाने, ये कुरान हकीकत में इंसान को बागे डालता है, किसी जगह भी तो हम अपनी मर्जी कर नहीं सकते। और अगर इस सारे माहौल को साथ लेकर अगर इंसान कुरान पढ़े ना, जैसे आपको यहाँ कई पाबंदियों में मुब्तला किया जाता है आपके ऊपर बड़े रहम के बावजूद, लेकिन इस सांचे से निकलने के बाद ही ये आदत पुख्ता होती है कि अपनी मर्जियाँ छोड़े। अब अगली आयत बड़ी अहम है, आप कह लीजिए पूरा सबक तो क्या, मुझे तो लगता है पूरी सूरत का खुलासा है इस एक आयत में। आइए देखते हैं 84 को। कुल, कह दीजिए, वही अंदाज है, बार बार इस सूरत में अल्लाह के नबी को बीच में रखा जा रहा है। आप कहिए, मैं नहीं कहता, क्योंकि अभी ये मक्की दौर में मैं नहीं कहता, आप कहिए। क्या कहें? कुल्लु यामलु अला शाकिलती, आप कह दीजिए कि हर शख्स काम करता है अपने शाकिला के मुताबिक, जबकि फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, बस आपका रब खूब जानता है उसे जो ज्यादा सीधे रास्ते पर है। अहम आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बात हुई, क्या आप कह दें हर बंदे को? कुल्लुन से मुराद तो आम बात है, हम सब जानते हैं, कुल्लुन में मुराद मुसलमान भी है काफिर भी है, ठीक है, तो मुसलमान का मुसलमान से मामला हो, मुसलमान का काफिर से हो, जिससे भी हो, हर एक यामलु अला शाकिलती, अमल करता है अपनी शाकिला पर। असल लफ्ज इधर शाकिला है, ये बिल्कुल वही लफ्ज है जिसको उर्दू में हम शक्ल कहते हैं, शक्ल। यहां इससे मुराद है काम करने का तरीका। शाकिला का लफ्ज बहुत जुमानी है, नुक्ता नजर, सोच, मसलक, तरीक़ाकार, नियत, मजहब, पसंद, लाइन ऑफ एक्शन, जितने मर्जी इसके नाम रख लें। आप मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि शाकिला से मुराद हर इंसान की शख्सियत का वो मखसूस सांचा है, जिसे आपको किसी धात से, जैसे आप देखें कि किसी धात से बनी हुई कोई चीज़ होती है ना, तो पहले उसका एक सांचा बनता है, फिर उसमें जब उस दाँत को डाला जाता है तो वो चीज़ वैसी बन जाती है। आपके घर में बर्तन होंगे, कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, जिसको जिस किस्म के सांचे में डाला गया ठंडा होके वो वैसे ही बन गया। लोहे को पिघला के डाल दिया, स्टील के ग्लास होते थे, कोई लंबे कोई छोटे कोई कर्व्स वाले। तो शाकिला क्या है? पैटर्न, सांचा, ठीक है। तो धात वैसी बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी शख्सियत का एक खास सांचा होता है। अगर आज इसको आप थोड़ा सा साइंस की जुबान में पहले समझ लें, जो इतना अहम नहीं है क्योंकि आगे हम इसको दूसरी तरह देखेंगे, तो जैसे जीन्स होते हैं ना, हर बंदे के अंदर विरसे में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ उसका माहौल होता है, बस बंदा वैसे ही बन जाता है। आप कह लीजिए कि मेरी और आपकी जो आज की शख्सियत है ना, ये इस पे बहुत सारे चीज़ों ने असर डाला। सबसे पहले कुछ चीज़ें मुझे विरसे में मिली, मौरूसी हैं, मेरे जीन्स में थी, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरा माहौल, जहाँ मैं रेस्ड अप हुई, मेरे घर वाले, उनका हाल, कुछ कुछ वो लोग जिनसे मैं मिली, जितनों से मैंने इंटरेक्शन किया, उन सबसे मैंने कुछ लिया। होते हुए जब एक इंसान ग्रो अप होता है ना, तो उसका एक खास रंग उड़ंग बन चुका होता है। आप इसको यूं समझिए कि आप 20 लोग जिनको आप जानती हैं खानदान के, लिख के देख लें उनके नाम, आपके मामू फूफो खाला देवर जेठ, 20 लोग लिख लें, कोई एक दूसरे से मिलता है? एक माँ के बतन से पैदा होने 10 बच्चे ही देख लें, किसी एक माँ को जेन में लाएं अपनी नानियों दादियों में और उनके 10 बेटे बेटियां, और 10 को अलग अलग रख के देखें, कुल्लु यामलु अला शाकिला, हर बंदे का एक अलग ही रंग है। जो बंदा नेकी या बदी के लिए जो भी मेहनत करता है ना, वो अपने उस शाकिला के अंदर रहकर ही करता है। आप ये कह लें कि हर बंदे की लिमिट्स है। जैसे आप देखिए कि इस ग्लास की एक लिमिट है ना, कि इसके अंदर इतना ही पानी डलेगा जितना इसकी लंबाई चौड़ाई है, बस इसी तरह हर बंदे का एक वसफ है, एक उसका कैलिपर है, उससे ज्यादा मैं उससे एक्सपेक्ट भी करूंगी तो वो नहीं करेगा, उसके लिए मैं जो मर्जी कर लूं। अल्लाह ताला यहां हमें तरीका सिखा रहा है, खुद एहतसाबी का भी और दूसरों से काम लेने का भी, कि लोगों से उनकी लिमिट से ज्यादा और उनके सर्कमस्टांसिस से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो। पहली बात, इसको अपने रंग में यूं समझिएगा, इंसान होने के नाते हमें बहुत सारे लोगों से काम लेना पड़ता है जिंदगी में। माँ होने के नाते आपको भी लेना पड़ता है अपने बच्चों से, बीवी होने के नाते आप अपने शौहर से भी ले सकती हैं, इसी तरह किसी इदारे में, किसी कोर्स में, किसी दीन के काम में आपको दिन रात हंड्रेड्स लोगों से काम लेना पड़ता है। अल्लाह ताला यहाँ लीडर्स को, बड़ों को, जो भी किसी काम के अंदर आते हैं, उनको एक तरीका सिखा रहा है, और वो क्या, कि तुम एक लाठी से सबको नहीं हांक सकते, हर एक को उसके माहौल में रख के देखो। कोई करीब से आया है, कोई दूर से आया है, कैसे, मैं इस यहाँ से करीब की बात नहीं कर रही। देखिए, हम सब मुख्तलिफ घरों में पैदा किए गए, कुछ जब पैदा हुए तो उनके इर्द गिर्द नमाज, दीन, फहम, कुरान पानी की तरह बह रहा था। उसका दीन पे आना, उसको अप्लाई करना निस्बतन आसान है। और एक ऐसे घर में पैदा कर दिया गया कि वो बस नाम का ही मुसलमान था, या चले कुफर पे था, हिंदू था, जो भी था, उसके लिए उस शाकिला से निकल कर बाहर आना बहुत मुश्किल है। अल्लाह सुब्हान तआला यही यहाँ बताते हैं कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा। और आप अगर इसको मजीद समझना चाहें ना, तो सूरत बकरा की आखिरी आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वअलैहा मा इक्तसबत। हम अपने बुजुर्गों को देखें, अपने माँ बाप में देखें, बड़ों को देखें जो गुजर गए, हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, हमें उनमें बहुत खराबियां दिखती हैं, उनके अकायद में, उनके तरीकों में, जैसे हमें उनके अंदर बहुत सारी खूबियां भी दिखती हैं। अब फिक्र लग जाती है, अल्लाह इनका क्या बनेगा। हमारी नानियाँ दादियाँ इतनी नेक थी, नमाजें पढ़ती थी, लेकिन मिसाल है कि वो कुंडे भरती थी, हो सकता है वो 11वीं शरीफ का ख़त्म दबाती हों। अब मैं क्या करूँ, कुल्लु यामलु अला शाकिला, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगी। उस नानी दादी का हिसाब आसान है, क्योंकि वो तो बोली वाली थी, उसको पता ही नहीं था। तुम्हारा हिसाब आज मुश्किल है, तुम्हें पता लग गया। जो जिस हालात में, अल्लाह ताला उसके साथ आम मामला वही करेगा। हदीस में आता है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, बाद में उसके ऊपर माहौल का रंग आता है। ये जो माहौल का असर है ना, ये शाकिल है, जैसा रंग वैसे लोग हो जाते हैं। اور یہاں سے ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اللہ کی اس کائنات میں تضاد بہت ہے، تنوع بہت ہے، بلکہ تنوع کہیں تو بات سمجھ آئے گی، نو نو کے لوگ ہیں، قد سب کے فرق، چہرے کا رنگ فرق، فیچرز فرق، بولنے کا انداز فرق. اگر شکل پوری ملتی ہوگی نا تو جب بولیں گے دو ٹوینز تو بولنے کی آواز فرق ہوتی ہے، ٹون فرق ہوتا ہے. انہی دنوں میں کہیں کوئی بات ہو رہی تھی، کوئی بات کر رہا تھا کہ ان کی دوست کے بیٹے ٹوینز ہیں نا، تو وہ آئیڈینٹیکل ہوں گے نہیں؟ تو وہ کہتی ہیں مجھے تو آج تک تمہارے بیٹوں کا نہیں پتا چلتا، تو میرا بیٹا چونکہ ان کا دوست ہے جو ٹوینس بچے ہیں، تو وہ کہتی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ امی اگر آپ نے دیکھنا ہے، مثال ہے کہ ایک احمد ہے تو ایک محمد ہے، تو فرق ان کا اس نے کیا بتایا کہ جو بہت ایکٹیو پھر پھر پھرتیلا سا ہے نا تو وہ سمجھے کہ احمد ہے، اور جو ذرا لیزی لیزی سا وہ محمد ہے. یعنی ان کے بیٹے نے سمجھا. وہ کہتی میں نہیں سمجھ پاتی. اس کی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو پتہ چل جاتا یہ کون سا کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہاں، بعض وہ لوگ ایک دوسرے کے پاسپورٹ یوز کر کے ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. تو ہر بندے کا فرق ہوتا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والوں کا فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے چائے بنوا کے دیکھ لیں، ہر بندے کی چائے کا رنگ فرق. بریانی پکا کے دیکھ لیں، کچھ کی تو کھائی نہیں جاتی اور کچھ کی چھوڑی نہیں جاتی. کچھ ہاتھ ملاتے ہیں تو دل کرتا ہے ہاتھ ہی نہ چھوڑیں، اور کچھ ہاتھ لگا لیں تو جان نکل جاتی ہے، وہ اتنا زور سے دباتے ہیں آپ کی انگوٹھی ہو سکتا ہے آپ کی انگلی میں گھس جائے. کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو اللہ کی دنیا رنگ رنگ کی، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا سیکھیں. کسی جگہ اگر اللہ نے آپ کو رکھا ہے نا کہ آپ کام لینے والے ہیں، آپ ایڈمن ہیں، تو پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں دوسرے بندے سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہ طلب کروں. جیسے اس کلاس میں کوئی کہے کہ ایک لیٹر پانی آ جائے، پاسبل ہے؟ اور میں ڈالنا چاہوں وہ ہوگا کیا؟ وہ باہر نکلے گا تو میں رہوں گی، میں کہوں گی اس گلاس کو عقل نہیں ہے، پانی ضائع کر رہا ہے. عقل مجھے نہیں ہے کہ میں نے اس گلاس کی کیپیسٹی سے زیادہ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ کام دو جو وہ کر سکتا ہے. اور کچھ لوگ بدل لیتے ہیں خود کو. دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہیں. کچھ چیزیں ہم بدل سکتے ہیں، مثلا میں اپنے اندر تقویٰ بڑھانا چاہوں بڑھا سکتی ہوں، میں عبادات اپنی انکریز کرنا چاہوں کر سکتی ہوں، میں عبادت بڑھانا چاہوں الحمدللہ بڑھا سکتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں جو اندر وہ جینیٹیکلی کوڈ لگ چکے ہیں، میں اپنی انٹیلیجنس نہیں بڑھا سکتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں تین دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں ان کو یاد، کچھ 13 بار پڑھتے ہیں پھر بھی 10 غلطیاں، یہ شاکل ہے، اس پہ پھر رک جائیں. اب یہ تو سمجھ آ گئی بات، آدھی بات ابھی سمجھے ہم، کہ دوسروں سے کام لیتے ہوئے تو فکر کریں اس کی کہ میں کسی سے اس سے زیادہ نہ مانگ لوں، اور نہ کسی کو جہنمی کہیں. واللہ دیندار وہ ہے جو دوسرے دینداروں کے بارے میں آپ کو نفرت نہ دلائے. کل یا مل ولا شاکلا، کوئی حنفی شاکلا، کوئی فلاں شاکلا، کوئی فلاں شاکلا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ریسورسز دے دیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے. لیکن ہر بندہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہر بندہ خود کو ہدایت پہ سمجھتا ہے. بگڑے سے بگڑے لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں آج کے دور میں کیا کیا. اور ایک اور شاکلا کا اثر بہت اوپر ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ رسم و رواج، معاشرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ تھا نا، آپ کی سکسیس کیا تھی؟ آپ نے شاکلا کے بت توڑے، رسم و رواج لوگوں کے توڑوائے، سوچ بدل دی. عرب گنوار تھے، بدو ٹائپ کے ذہن تھا. ہاں ان کے اندر لیڈرشپ چھپی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو غلط چیزوں میں رکھا ہوا تھا. ڈکیتیاں کرتے، راہزنی کرتے، قبیلہ سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم تھا. اللہ کے نبی نے وہ بت توڑ کے ان کے اندر کی خوبی کو نکال کر ان کو ورلڈ لیڈر بنا دیا. کبھی آپ نے سوچا اللہ نے عرب کو کیوں چنا؟ صرف ایک وجہ بھی لے لینا تو مور دین انف ہے کہ ان میں لیڈرشپ کوالٹی تھی. اور اسلام کا مزاج لیڈرز والا ہے. اسلام کسی ایسے ملک میں آ جاتا نا جہاں یس یس کرنے والے ہوتے ہیں، تو کبھی اسلام اتنی جلدی 13 سالوں میں نہ پھیلتا جو اللہ کے نبی کے دور میں پھیل گیا اور آپ کے صحابہ کے دور میں. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر وہ خوبیاں تھیں، صرف ماحول کی گرد پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک نیا انسان بنایا. بلکہ اس کے بارے میں میں نے ایک جگہ کوئی ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا آج کی بات میں، کہ عام قومیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس تو کوئی ایک ہیرو ہے نا، کوئی امریکہ کا ہیرو ہوگا، کوئی انگلینڈ کا ہیرو ہوگا، کوئی کسی ناروے کا ہیرو ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمز، یہ تو نرسری آف ہیروز ہیں. ان کا جو صحابی اٹھا کے دیکھے لگتا ہے سب سے زیادہ خوبیاں اس میں ہیں. یہ اللہ کے نبی کی خوبی تھی. صحابہ کے اندر فہم فرق تھا. اس کو ایک اور اینگل سے سمجھیں. چلیں اسی پہ لے کے آتی ہوں کہ پہلی بات تو ہم سمجھ گئے کہ دوسروں سے کام کرواتے وقت یہ سوچ لیں کہ کون کیا کر سکتا ہے، اس سے کرائیں. اپنے اوپر کیسے لے کے آؤں، میں خود کو کیسے پہچانوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہی بنی ہوئی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث نہیں ہے، حالانکہ بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، یہ بس ایک کال کہہ لیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، میں کیسے پہچانوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، مجھ سے یہ نہیں مانگا جائے گا کہ امریکہ میں اسلام آیا کہ نہیں آیا، چائنا مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، صدر اوباما کو اسلام کتنا سمجھ آیا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ میرے حد سے باہر کی چیزیں ہیں. مجھے کیا چاہیے کہ میں اپنے ارد گرد اور اپنی ذات کو کتنا اسلام پہ لا سکتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ جیسے ایک گھڑی ہوتی ہے نا، اب گھڑی کے اندر مختلف پرزے ہوتے ہیں. ایک سکرین ہوتی ہے، شیشہ سب سے اوپر دکھتا ہے، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے وہ ڈائمنڈس لگے ہوں گے جو اس کے بارہ سائنس دیتی ہیں، دو سوئیاں ہوں گی، ایک اسٹرپ ہوگی بڑی خوبصورت سی. کیا بتائیے، یہ سب چیزیں آپ جوڑ دیں تو گھڑی کام کرے گی؟ اندر کیا اس کے، باہر تو یہ چھ چیزیں گنی ہیں نا، اندر شاید 60 قسم کے پرزے ہوں. کسی گھڑی کو چلانے کے لیے جس طرح فریم ضروری ہے، اور اگر شیشہ اتار بھی دیں گھڑی پھر بھی چلے گی، ہاں سیکیور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، واٹر ریزسٹنٹ نہیں ہوگی، لیکن گھڑی پھر بھی رہے گی، لیکن واٹر ریزسٹنٹ ہوگی تو سیکیور ہوگی. بس اس کو آپ سمجھ کے جائیے گا آج، پھر آپ دیکھیں گے کہ میں آج کے دور میں اسلام کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کس درجے کا پرزا ہوں. میرے میں خوبی تھی اندر کی ایک پتلی سی تار بننے کی، بس میری خوبی یہ تھی، اللہ نے مجھے دی یہ صفت. میں کہتی ہوں نہیں مجھے شیشہ بننا کیونکہ وہ سب کو دکھتا ہے، تو میں نے خود کو ضائع کر دیا. بہت سارے لوگ دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے، وہ اپنی شاکلہ سے خلاف کام کرواتے ہیں خود سے. اصل کام کہہ کے گھڑی چلے، اگر میں شیشہ بن کے نہیں بھی سامنے آئی تو اندر کا ایک پتلا سا پرزا بن گئی، میں اس مقصد کا حصہ بن گئی نا. آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو یہی ڈھونڈنا ہے، اسلام کی اس گھڑی کو. اب گھڑی کو گاڑی پہ لے آئیں تو اور بڑی ہو جائے گی، فرنٹ بھی ہے اس کے اندر، ڈرائیونگ سیٹ بھی ہے اس میں، ونڈ سکرین بھی ہے، سب ہے، لیکن جو اس کا اندر انجن ہے، اس میں بیٹری ہے، اس کے اندر ریڈیئیٹر ہیں، کیا کچھ بلائیں ہیں. میں شیشہ نہیں بن سکتی، اتر جائیے اسٹیج سے. مسئلہ کیا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دین کے نام پہ بھی کہ ہم اپنی خواہشات لکھ کے دیکھ لیں. میری خواہش ہے کہ میں یہ کروں، ہم اپنی خواہش اور اپنی شاکلہ کے اندر فرق نہیں کر پاتے. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے لیکن خوبی نہیں ہے وہ، تو ہٹ جائیں، پلیز ہٹ جائیں اس رستے سے، ورنہ پوری گاڑی کو خراب کر دیں گے. آج اسلام کی گاڑی کیوں نہیں چلتی ہوئی دکھتی کہ لوگوں کو باہر کی باڈی بننا ہے، سٹیرنگ وہ چاہتے ہیں، بریک بھی بننا چاہتے ہیں. میں یس کہوں تو یس گاڑی چل پڑی، میں نے نو کیا تو نو، ایکسیلیٹر میرے ہاتھ میں، جتنا مرضی بگاؤں جتنا مرضی روکوں. لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اندر کی ایک بیٹری بننا چاہتے ہیں، جو صرف اپنے آپ کو جلا جلا کے گاڑی کو چلاتی ہے، وہ نہیں بننا چاہتے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ، لوگ ظاہر داری پہ آ گئے. اور آپ دیکھیے کہ سارے پرزے ہی کہیں کہ ہمیں اس گاڑی کی سکرین پہ لگائیں تو گاڑی چلے گی. پھر وہاں وہی بات آ گئی، مدخلہ صدق اور مخرجہ صدق کی، کہ پہلے اپنی نیت چیک کریں کہ اسلام کی خدمت چاہتی ہوں کہ اپنے نام کی خدمت چاہتی ہوں. اگر اسلام کی خدمت چاہتی ہیں نا تو آپ چیک کریں. مثال دیتے ہیں، چھوٹے لیول پہ لے آئیے، کسی بھی جگہ کوئی دین کا ادارہ بنتا ہے، مسجد کا نام لے لیجیے، مسجد کی بات کر لیں، اسی میں ادارہ خود ہی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں مسجد چلانی ہے، ایک امام صاحب چاہیے وہاں جن کی بہت ٹو دی پوائنٹ سنت کے مطابق نماز بھی ہو، قرت بھی اچھی ہو، وقت کے پابند بھی ہو، ٹھیک ہے، بس اتنی بھی خوبی کافی ہے تو وہ امام بننے کے لیے کافی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے ان کا اور نماز پڑھنا پڑھانا آتا ہے. دو تین وہاں ہمیں اچھے قاری چاہیے کہ جو بچوں کو ناظرہ پڑھا سکے، ضرورت ہے نا ان کی، یہ بھی دو ہو گئے، قاری صاحب بھی ہو گئے، امام صاحب بھی ہو گئے. ہمیں ایک پرسن چاہیے جو مسجد کی مینجمنٹ کو سنبھالنے کے لیے آفس میں بیٹھے. کیا اس سے مسجد چل جائے گی؟ یہ سب کچھ بھی ہو نہ کوئی مسجد کی صفائی کرے، نہ چابی لے، نہ کھولے، نہ بند کرے، نہ اس کے اندر ہونے والے جو بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو فکس کرے، تو کیا دوسرے تیسرے دن سے ہی وہ نمازیوں کے لیے ایک اچھی جگہ بنے گی؟ مثلا ہم تو مسجد میں جاتے ہیں نا نماز کے وقت پہ، کہ ایسا نہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت کیا لگتا ہے کہ یہ مسجد ہمیشہ ایسی رہتی ہے، صاف ہی ہوتی ہے ہمیشہ؟ کبھی ہم نے سوچا کون ہے جو اس کارپیٹ کو صاف کرتا ہے، کون ہے جو اس باتھ روم کو صاف کرتا ہے، کون ہے جو ادھر خوشبو چھڑکتا ہے؟ اگر ہم کسی بڑے فنکشن کے ختم ہونے کے بعد ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو جس طرح ہم دین کی جگہوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اگلے دن جائیں تو ویسی ہوتی ہے، اتنے کوڑے کے ڈھیر، اتنے کون اٹھاتا؟ کوئی تو اٹھاتا ہوگا نا، تو اس کوئی کو اٹھانے والے کی شاکیلہ کیا تھی؟ اس نے سمجھ لیا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، میں مسجد کے باتھ روم صاف کر سکتی ہوں، وہ اس کو کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ممبر پہ کھڑے امام صاحب کی زیادہ حیثیت ہے کہ اس مسجد کی صفائی کرنے کی؟ ایک جملہ لکھ لیں، ہم کہتے ہیں مکیر کام کریں، صفائی کریں۔ میں اکثر پوچھتی ہوں خود سے بھی، دوسروں سے بھی پوچھتی ہوں کہ صفائی کرنا باعزت کام ہے یا گند ڈالنا باعزت ہے؟ گندگی ڈالنا، اور آج ہم گندگی ڈالنے کو فخر سمجھتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، کھاتے ہیں تو چیزیں وہیں چھوڑ دی، اپنا گند ڈال کے آ گئے، جو صفائی کرتا ہے وہ تو مہذب ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی نظام کے اندر اس طرح گھستا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام نہ آئے، مثال آپ گھڑی کی بات لیں، اگر گھڑی گرے سب سے پہلے کیا ٹوٹے گا؟ شیشہ ٹوٹے گا۔ ڈسپلے والے لوگ کسی دین کے کام میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، نظر لگنے کا ڈر، اپنے نفس کا ڈر، کوئی وہاں حملہ کر دے تو اس کی جان کا خطرہ۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اندر سے گھڑی کام کر رہی ہے کہ نہیں، سیل فون لے لیں آپ اپنا۔ جو چھپ کے دین کا کام کرتے ہیں نہ تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر لگے گی، اور نہ ان کو اس طرح کا کوئی خوف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیکیور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں، میں نے وہ کام کرنا ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ اسی مسجد کی مثال کو لیں، قاری صاحب 10 سال لگا کر انہوں نے پڑھا، تجوید درست کی، بہتر کیا، وہ ایک اچھا کام کر سکتے تھے نا، آپ ان کو ان کی جگہ سے ہٹائیں، چلو اترو جا کے باتھ روم صاف کریں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو باتھ روم بھی شاید اچھے ہی صاف کر دیں، آپ کی مسجد کو فرق پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ آج کے دور کا۔ جو لوگ سکلڈ ہوتے ہیں نا، اس میں شاکلہ میں ایک تجربہ بھی آتا ہے، ایکسپیرینسڈ لوگ جو اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں نا، ان کو کبھی ان کی جگہ سے نہ ہٹائیں، کیونکہ جو ہی آپ نے ان کی جگہ سے ہٹا کے چھوٹا کام دے دیا وہ بگڑ جائیں گے، وہ کام اچھا ہو جائے گا یہ کوئی نہیں کرے گا۔ ایک اصول بہت چھوٹا سا میں اکثر ہی سبھی کو دیتی ہوں، خود کو بھی دیتی ہوں، عمل کتنا کوئی کر پائے یہ تو ظاہر حالات کے مطابق ہے، لیکن ایک جملہ ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے، یہ میرا اپنا کوڈ ورڈ ہے اپنے لیے۔ میں نے اسکول کے ناطے سے یا جو بھی ہمارا سب کا ایک چھوٹا سا کام مشن ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو دوسرے کر سکتے ہیں۔ کیا خوبی ہے میں نے وہی کام کیا جو آپ بھی کر سکتے تھے، کوئی فائدہ ہوا؟ میں نے وہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے اور جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ گھریلو زندگی میں، آپ ساس بہو پہ بھی لیں گے آپ دیکھیں گے، ساس کو پتہ ہے کہ اب یہ کام میری بہو میرے سے اچھا کر سکتی ہے، صرف اس لیے کہ چمچہ میرے ہاتھ میں رہے میں نے نہیں چھوڑنا، چابیاں میرے ہاتھ میں رہے چاہے یاد بھی نہ اٹھائی بھی نہ جائیں، میں نے نہیں دینی۔ یقین کریں وہ لوگ جو کام دوسرے کرتے ہیں، خود بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، اور بعد میں کہتے ہیں بہویں کرتی نہیں، بیٹیاں کرتی نہیں، یہ جو نئے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالیں، یہ تو ذمہ داری نہیں، آپ کرنے تو دیں، سر پہ تو آپ ان کے سایہ بن کے چڑھے، وہ کام کریں تو کیسے کریں؟ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کام دے دیں، اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں، ادھر قریب آ جائیں، پیچھے آواز نہیں آئے گی۔ شاباش، یہ بہت اہم سوال ہے، خود احتسابی کا صبر۔ دیکھیے پہلی بات ہے کہ کیسے پتا چلے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، ٹرائل اینڈ ایرر، بہترین اس کا طریقہ ہے آپ اپنے آپ کو آفر کریں۔ جیسے مثال ہے، آپ لوگ نہیں زیادہ جانتے ہوں گے لیکن ایڈمنس جانتے ہیں، کہ جیسے کوئی نیا کورس آفر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی ایک تو فارم دیتے ہیں، ساتھ ہم والنٹیئر فارمز کی بھی آپشن دیتے ہیں کہ پورے شہر میں، دنیا میں، جہاں بھی کوئی اس کورس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو دے۔ آپ خود کو سمائیں میں کیا کر سکتی ہوں، ہر کام ایک ایک دفعہ کر کے دیکھیں، एक हफ्ता इधर एक हफ्ता इधर उधर उधर करके देखें। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल प्रैक्टिकल देती हूँ, क्योंकि बात वो होती है जो प्रैक्टिकल हो। जब हम लोगों ने सबीलुल जन्ना कोर्स पूरा किया था आज से 2-3 साल पहले, उसके बाद नूरुला नूर कोर्स शुरू हुआ था। जब नूरुला नूर कोर्स शुरू हुआ तो उसके साथ ही एक तीसरा कोर्स भी शुरू हो गया जो नया सुबुल इस्लाम के नाम पर था। अब हुआ क्या कि जब हमें उस कोर्स में लोगों की भी ज़रूरत थी और इनको मजीद पढ़ाना, ये ऐसे जैसे कल अल्लाह करेगा आपका ये कोर्स पूरा होगा तो इसकी जगह और डिमांड है कि एक नया कोर्स शुरू करें, लेकिन आपको भी एडवांस कोर्स कराना है, ये हालात थे। अब करें तो क्या करें, क्योंकि अगर आप सबको कहें कि आप मजीद आगे ना पढ़ें और नए लोगों की हेल्प करें तो कुछ को तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमें पता है कि अभी आपका इल्म अधूरा है। हमने क्या किया कि जो नया कोर्स एडवांस कोर्स था जिसका मकसद ही टीचर ट्रेनिंग होता है, हमने उनके कोर्स के अंदर ये डाल दिया। मिसाल है कि अगर आप ये 25-30 लोग इधर बैठे हैं तो आप सब की जो ट्रेनिंग सेशन है, एक हफ्ता आपकी रिसेप्शन पे ड्यूटी, आपकी बच्चों के अंदर ड्यूटी, आपकी किचन में ड्यूटी, आप तीन को हमने ग्रुप दे दिया। ये किया हमने पूरा वो साल इस तरह हुआ, और फिर उसके बाद स्विच हो गई, अगले महीने में आप रिसेप्शन पे आ गई तो पिछली लाइन आगे आ गई। इस तरह उस पूरे साल में हमने हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट हर जगह पे खड़ा किया, और उसका पता है कि आज नतीजा क्या है। अब तीसरा साल है, अब ये इस वक्त उसके बाद तीसरा सेशन आया, अब हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन क्या अच्छा कर सकता है। वो वक्त की जरूरत भी थी, अब उसके बाद अगले साल में से कुछ लोग साथ मिल गए, दिन ब दिन माशाल्लाह साथ ही मिलते जाते हैं। पिछले लोगों में से हमें समझ आ गया कि नहीं, ये बाजी इस जगह बहुत अच्छी हैं, ये सिस्टर इधर अच्छी हैं। अब इस साल ये जो बिल्कुल आखिरी अभी मेरा लास्ट ट्रिप था नॉर्वे से, मैं अभी एक वीक पहले आई हूँ, तो मैंने उसमें फ़र्ज के दर्जे पे इनको कह दिया कि वो जो पहले साल की सबीलुल जन्ना थी, आपने इस सुबुल सलाम में इनको कोई जिम्मेदारी नहीं देनी, अब इनको बिठा के पढ़ाएं। 2 साल इन्होंने काफ़ी काम किया, अब इनकी जगह जिम्मेदारियां उनको दें जो इसके बाद वाले, इनको अब अपने अंदर और असर व रसूख लाना है। खुद ब खुद यकीन करें पोलराइजेशन शुरू हो जाती है। आप एक काम 10 लोगों को दें, मुझे किसी की बात याद आती है, हमारे उस्तादों में एक उस्ताद थी तो उन्होंने कुछ लोगों को काम दिया कि जाओ ये कमरा साफ करो, असाइन करो। सब लोग साफ करने लग गए, एक लड़की जो थी वो गई तो उसने वो जगह साफ की, वहाँ कुछ धब्बे थे शीशे के ऊपर या कुछ थे जो दूसरों में से किसी को ना दिखे। उन्होंने उसी लड़की का रिश्ता अपने भाई के लिए मांग लिया कि इसकी नज़र अच्छी है। देखिए जो उस्ताद होते हैं ना, वो कहना चाहिए कि सुनार वाली नज़र रखते हैं, हीरा कौन है और पत्थर कौन है। इसी तरह एक और मुझे किसी की मिसाल याद आती है, यकीन करें हमने अभी अपनी अना नहीं तोड़ी। ये शाह किला का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है ना, इंसान की अना टूटती है, हमारी अना हमारा बहुत बड़ा पोता है। तो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ ग्रुप लीडर के तौर पे कोई असाइन हुआ, उनको कहा कि आइए आपकी ट्रेनिंग है, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया, अब आप अपने ऊपर लें, आपको कहा जाए कि आपको किसी आने वाले कोर्स में या वीकेंड कोर्स में ग्रुप असाइन किया जाएगा और आप इस फ्राइडे को आ जाएं, जो हम कभी नहीं कहेंगे आपको, लेकिन बिलफर्ज कह दें कि आप आइए आपकी ट्रेनिंग है। आप क्या सोच के आएंगे, कुर्सी मेज को बहुत खूबसूरत पावर पॉइंट और असाइन दिस दैट दैट। कहती हैं जब मैं गई ट्रेनिंग के लिए तो मेरे हाथ में मेरी उस्ताद ने झाड़ू पकड़ाया कि जाओ किचन साफ करके आओ। क्यों? कि सैयदुल कौमी खादिमुहुम, किसी कौम का सरदार या लीडर वही बनता है जो उनका खादिम होता है। तो ये कुर्सी मेज पे बैठ के बात करने की नहीं है, बल्कि आज सब सोच के आए मेरी क्या खूबी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया। देखिए बाज दफ़ा बावजूद कोशिश के हम वो काम नहीं कर सकते जिसकी ख्वाहिश है। मिसाल है, आपका दिल करता है बेहतरीन आवाज़ में कुरान पढ़ें, कारी मिशारी की तरह आप कुरान पढ़ें, आप खुज़ैफ़ी की तरह पढ़ें, नहीं पढ़ सकते, हमारा एक्सेंट ही वो नहीं, हमारी आवाज़ मोटी है, तो क्या करें, आप उस पर रोएं, उसको छोड़ के चेक करें मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, अब वो करना शुरू कर दें। ना हम अरब बन सकते हैं, लेकिन अजमी बनते हुए हम अपने कुरान का तर्जमा तो पढ़ सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि मेरी नज़र में कामयाब इंसान वो है, कामयाब इंसान वो है जिसको उसकी स्किल्स के मुताबिक काम मिल जाए, वो कामयाब है। बहुत सारे लोग बेचारे इसलिए नाकाम होते हैं कि जो काम उनको दिया जाता है ना, या उनके हिस्से में आ जाता है, या मतलब हालात की तकाजा वो होता है, वो काम उनके लिए सूटेबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको शुरू में शायद आज ही कहा कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अल्लाह ने बच्चों के लिए नहीं पैदा किया पढ़ाने के लिए। अब मैंने ऑब्जर्व कर लिया, हो सकता है शायद मैं कभी पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा भी दूं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि बच्चे उछलते कूदते बहुत हैं और आप तो हिलते भी हैं, तो मैं आपको डांट देती हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकती। जो आज के दौर का वो उछला कूदी स्टाइल है पढ़ाने का, बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए तो उछलना भी पड़ता है कूदना भी पड़ता है। हमारे पास स्कूल में वहाँ एक टीचर थी, यकीन करें मैं इस दफ़ा भी गई तो मैंने उनको स्पेशली कॉल करके बुलाया, मैंने कहा वो किधर है नज़र नहीं आ रही। वो हमारे सैटरडे क्लास में सबसे छोटे ग्रुप को लेती थी और कहानी सुनाती थी। बिलीव मी के जब राउंड पे गुजरते थे ना, मैं ऐसे चक्कर लगाती थी कहाँ क्या हो रहा है, तो उसकी क्लास में जाने के बाद मेरा दिल नहीं करता था, तो मुझे भी मजा आ रहा होता था। वो जो हरकतें कर करके उनको कहानी सुना रही होती थी, तो मैं तो नहीं सुना सकती ना ये कहानी, तो मैंने मान लिया। अब मैं कहूँ नहीं ये तो कोई खिदमत नहीं, बूढ़ों को क्या पढ़ाना, बड़ों ने तो जो बनना था बन गए, ये तो थोड़े सालों में फौत हो जाएंगे, मेरा तो सदका जारिया ख़त्म होगा, मुझे तो जवानों को बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो जिंदा रहे, तो मैं नाकाम हूँ। ठीक है, पता नहीं ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं ये भी कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कोई और आगे आ जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊँगी। यकीन करें अपने साथ दूसरी कुर्सी रख के 2 साल नॉर्वे में काम किया। एक पहला साल जिसमें पढ़ाया वो सिर्फ वो कुर्सी थी कि जिस पे मैं पढ़ाती थी, और सारी पढ़ते थे है ही, एक पहला स्टाफ था, पहले ही लोग थे। जिस दिन उनका वो कोर्स पूरा होना था उससे ही पहले दूसरी, जैसे यहाँ एक कुर्सी पड़ी होती है वहाँ भी 2 कुर्सियाँ अभी भी पड़ी, चाहे वो उस कुर्सी पे ना बैठे, उनकी अपनी कुर्सी है, लेकिन खुद बिठाया, कांपते कांपते बैठते थे कि आपके सामने तो बात ही भूल जाती है, तो भी मैं इतनी ख़राब हूँ कि मुझे देख के आपको बात भूल जाती है। खुद सिखाया कि इस कुर्सी पे बैठने की एक झिझक होती है। लोग तो मैंने देखे 10-10 साल अपनी जगह नहीं छोड़ते कि जी हमारे मुकाबले पे कोई ना बोले, पीछे बैठती थी वो सबसे पीछे। पहला कोर्स जो हमारा सुबुल इस्लाम का था सबीलुल जन्ना के बाद, जो लाइव के बाद दूसरा कराया, सिर्फ इसलिए दोबारा तफसीर नहीं कराई, यकीन करें नॉर्वे के पहले साल में खुद तफसीर कराई, जो अब सब जगह माशाल्लाह चल रहा है सबीलुल जन्ना के नाम पे। उसके बाद अगला साल जब शुरू हुआ ना तो पढ़ाया, शुरू में तो लेना ही था, 5 पारे पढ़ाए, तो फिर फील हुआ कि पढ़ा तो रही हूँ, मज़ा तो आता है सबको, लेकिन मैं सुबह आने के बाद इधर आके अंदर, ये तो ऐसा है ना, तो वहाँ हमारा क्लासरूम बिल्कुल समझे कि बिल्कुल बैक पे है, तो मैंने कहा ये साथी तो शुक्र करते हैं ये वहाँ बैठी हैं, अब इन्होंने कौन सा वापस आना है, छुट्टी होगी तो ये निकलेंगी, मुझे नहीं पता कैंटीन में क्या है, मुझे नहीं पता रिसेप्शन पे क्या है, और नुकसान क्या है कि मैं सिर्फ क्लासरूम तक बंद हो गई। मैंने कहा नहीं ये तो सही नहीं है, हालात अल्लाह ने ऐसे बनाए, मैंने ट्राई करा के इन्हीं को वहाँ बिठाया, अब होना क्या लगा, अब इनकी सख्ती आ गई साथियों की, वो अपने आराम से बटे चाय पी रहे एकदम मैं अंदर घुस गई, अब उनको समझ आ गया कि ये तो अब राउंड पे। फिर मैं क्या करती थी, मैं पूरा वक्त ये जैसे अभी क्लास हो रही है मैं पूरा वक्त घूमती थी, कभी क्लासरूम में बैठ गई, कभी किचन वालों के सर पे पहुंच गए, कभी बेबी सिटिंग में, कभी ऑफिस में, इसको उससे मैंने फील किया कि इस वक्त इस स्कूल को इसकी ज़रूरत है। अगर मैं अपनी जात को देखती तो मैं एक और साल पढ़ाती, देखिए जितना आप पढ़ाएंगे उतना फ़ायदा होगा, और आपको यकीन करें पढ़ाना बहुत आसान है। मैं आज भी यहाँ बैठ के उन सब साथियों को सलाम करती हूँ कि ये सारी मैनेजमेंट जो आप लोग संभालते हैं, ये पढ़ा के बैठना बहुत आसान है, ये कुर्सियाँ उठा के इतनी इधर से उधर करनी बहुत बड़ा काम है, लेकिन टाइम वो कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर देखे, और उसका फ़ायदा मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि मैंने इतनी जल्दी छोड़ के इधर आ जाना है, और अगर इनको ये 2 साल ना दिए होते सामने तो आज उनकी टांगे कांप रही होती। फायदा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता गलतियां कर 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 के सीख रहे, अभी भी गलतियां करते हैं बहुत सारी करते हैं, लेकिन खुशी है इसलिए कि उनको आगे लाना है। हम कब तक साथ रहेंगे, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा कर दें, बिलीव में अगर आप चाहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ सदका जारिया छोड़ना है तो फिर आपको हर बंदे को अपने साथ लगाना पड़ेगा।
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً